أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان واتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفضل العظيم
قرآن کریم نے جو مالی نظام دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے یہ ایک بالکل الگ اور ممتاز نظام ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے کسی مذہب میں دکھائی نہیں دیتی. یہ مضمون اپنی ذات میں اتنا وسیع اور اتنا گہرا ہے کہ اگر کسی غیر مذہب والے کو اس موضوع پر کوئی مسلمان متوجہ کرے اور اسے دعوت دے کہ تم اپنے مذہبی سے نہیں دنیا کے تمام مذاہب سے خدا کی خاطر مالی قربانی دینے والے مضامین کو اکٹھا کر لو اور ہم قرآن کریم سے ان آیات کو پیش کریں گے اور پھر دیکھو کہ کیا قرآن کی تعلیم بھاری رہتی ہے یا سارے دنیا کی اجتماعی کتابوں کی مشتمل تعلیم قرآن کریم کے اوپر بھاری ہوتی ہے. میں نے یہ موازنہ بڑے غور سے کیا ہے اگرچہ تمام مذاہب پر گہری نظر سے تمام مذاہب کی تعلیم پر بہت گہری نظر ڈالنے کی توفیق تو نہیں مل سکی لیکن موازنہ مذاہب کا چونکہ مجھے شوق رہا ہے میں نے اصل کتابیں بھی پڑھی ہیں بعد کے زمانے کی کتابیں بھی پڑھی اور ان پر اپنوں اور غیروں نے جو تبصرے لکھے ہیں وہ بھی بہت حد تک پڑھنے کی توفیق ملی. اس لیے میں اپنے ذاتی علم کی بنا پر یہ بات کر رہا ہوں, کسی محبت کے دعوے کی بنا پر نہیں. قرآن کریم سے ہر مسلمان کو محبت ہے, وہ اس کے متعلق بلند بانگ دعوی بھی کرتا ہے, لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے احمدیت کو جو نئی ادا سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ محض محبت کی بنا پر دعوے نہ کرو بلکہ تجربے کی بنا پر دعوے کرو. خود دیکھو, پرکھو اور خوب اچھی طرح غور کے بعد بات کرو. پھر یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں پورے غور کے بعد کہہ رہا ہوں. آپ میں سے ہر احمدی اس نسخے کو آزما کے دیکھ سکتا ہے اور ہرگز کبھی وہ تمام دنیا کے مذاہب کی اجتماعی طاقتوں سے بھی اس معاملے میں شکست نہیں کھائے گا. یہ تعلیم اتنی وسیع ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی, اور اتنے گہرے فلسفے پر مبنی ہے, اور ہر اونچ نیچ کو اس طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ ایک پورا جہان ہے نظام مالی قربانی کے نظام کا جو اپنی ذات میں کامل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. اس وضاحت اس تفصیل کے ساتھ یہ سمجھانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ آج کل جو بعض نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں انہیں بارہا یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام کامل کیسے ہو گیا, دنیا ترقی پذیر ہے ہر چیز میں, پہلے کی نسبت کسی نہ کسی صورت میں ترقی کے آثار دکھائی دیتے ہیں, کیا ہم ایک جامد مذہب کو مان جائیں گے جو اپنی ذات میں کھڑا ہے اور ایک ماضی کے کسی نقطے پر آ کر جمود اختیار کر گیا ہے, وہاں سے آگے نہیں چلتا. یہ اعتراض سادہ لوگ مسلمانوں پر بعض دفعہ برے اثرات مترتب کرتا ہے, بعض دفعہ ان کو پھسلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور آج کل جو جی سندھ کی تحریک ہے اس میں بھی سید صاحب نے جو اپنا فلسفہ حیات پیش کیا ہے نمایاں طور پر اس بات کو اٹھایا ہے کہ قرآن تعلیم اپنے زمانے میں اچھی تھی لیکن فرسودہ ہو گئی. 1400 سال پہلے کی باتیں ہم کیسے کر سکتے ہیں, 1400 سال پہلے کی کتاب آج ہماری رہنمائی کیسے کر سکتی ہے؟ تو ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہے, صرف مذہب کے لیے نہیں, تمام دنیا کے مالی نظام آج تک جو انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہیں ان کے فلسفے کو جانچ لیجئے, ان کو اکٹھا دعوت دے دیں کہ جاؤ اور سارے مل کر اپنے اپنے فلسفوں اور اپنے اپنے نظام سے چوٹی کے نقطے نکال کے لاؤ اور پھر اسلام کے مالی قربانی کے نظام سے مقابلہ کرو, اور پھر یہ بتاؤ کہ کہاں اسلام کے مالی قربانی کے نظام میں اصلاح کی اور ترقی کی گنجائش ہے. کچھ کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے, محض خیالی تبصروں کے اوپر تو انسان اپنے دینی تصورات کو تبدیل نہیں کیا کرتا یا اعتقادات کو تبدیل نہیں کیا کرتا. تو یہ وہ نظام ہے جس کے متعلق ہر احمدی کو خوب اچھی طرح واقف ہونا چاہیے, اور عملاً وہ واقف ہو رہا ہے. اور یہ نظام اگر آج دنیا میں کہیں رائج ہے تو جماعت احمدیہ میں ہی اس کا ایک پہلو رائج ہے, یعنی وہ جو توئی چندوں کا نظام ہے وہ جماعت احمدیہ میں رائج ہو گیا ہے اور حسن و احسان میں ترقی کر رہا ہے, حسن میں ترقی کر رہا ہے, ایک دن بدن زیادہ نکھر کر سامنے آتا جا رہا ہے. اور اس نئے بناؤ سنگھار میں ایک ادنا سا موقع بھی ایسا پیش نہیں آتا کہ قرآن تعلیم پر اضافے کی ضرورت پیش آئے. اس کے دائروں میں یہ سب کچھ ترقی ہو رہی ہے اور اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم جانتے ہیں ابھی بہت کچھ آگے بڑھنے کی گنجائش موجود ہے. بس آج 15ویں صدی کا انسان یا 14ویں صدی کا انسان مڑ کر دیکھ رہا ہے رہنمائی کے لیے, اور قرآن کریم کی تعلیم سے جب وہ استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنے والا باقی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ زمانے کے آخر تک قرآن بنی نوع انسان کا ساتھ دے گا, وہ ساتھ دے سکیں نہ دے سکیں یہ الگ بات ہے, لیکن قرآن کی تعلیم کسی دنیاوی فکر سے یا دنیاوی ترقی سے پیچھے نہیں رہ سکتی. بہرحال اس مختصر تعارف کے بعد اب میں ایک خاص پہلو کو جماعت کے سامنے نمایاں طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. دو طرح کی مالی قربانی کرنے والوں کا حال قرآن کریم نے بیان فرمایا, जो आराध के हवाले से बयान फरमाया है, इसमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता गुलामों का जिक्र नहीं है। इसलिए इस बात को खूब अच्छी तरह से देख सोच लें कि ये इन आयात में से जो पहली आयत है उसका खालिसतन इतलाक आराब पर होता है, उन बदुओं पर जिन्होंने इज्तमाही तौर पर इस्लाम को कबूल कर लिया लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से फैजयाब ना हो सके। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़किये की ताकत ऐसी थी कि उन अंधेरों में भी पहुंची है, उनको भी पार किया है और उनमें भी जगह जगह बहुत ही खूबसूरत नूर की शमें रोशन कर दी हैं। दूसरी आयत इस मज़मून को बयान कर रही है और तीसरी आयत यह बताती है कि नमूना वही है जो अंसार और महाजरीन का नमूना है। अराब में बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, बहुत खूबसूरत कुर्बानियां करने वाले भी हैं, लेकिन नमूने के तौर पर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके साथियों अंसार और महाजरीन को पकड़ना है क्योंकि वहां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता है। पहली आयत में फरमाया वमिन अल आराब मन यत्तखिज़ु मा युन्फिकु मग़रमन व यतरब्बसु बिकुम अद-दवायर, कि इन आराब यानी बदुओं में से बहुत से ऐसे भी हैं जो जो कुछ खर्च करते हैं चट्टी समझ के खर्च करते हैं और दिल में कुरते रहते हैं और साथ साथ मख्फी तौर पर तुम्हें बददुआएं देते रहते हैं कि इन्होंने हमें मुसीबत डाल दी, हमारे अम्वाल में से हिस्सा लेने वाले आ जाते हैं और खुदा करे इन पर कोई आसमानी हवादिसाती मुसीबत नाजिल हो और इन मुसीबतों का शिकार हो जाए। इस मजमून से पता चलता है कि यह इस्लाम के गलबे के दौर की बात है जबकि इस्लाम इस हद तक गालिब आ गया था कि हुकूमत भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गुलामों के हाथ में थी और अरबों पर एक इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी। अगर यह ना होता तो चट्टी वाली बात ना होती और इसी में दरअसल पेशगोई भी थी आइंदा फितनों की कि जब भी निजाम हुकूमत ढीला होगा वो लोग जो इंतजार में बैठे हैं कि तुम्हारा पकड़ तुम पर कोई मुसीबत टूटे तो ये आजाद हों, वो ना सिर्फ ये कि पैसे देने खुदा की राह में पैसे देने बंद कर देंगे बल्कि इनके बागियाना ख्यालात जोर से सर उठाएंगे और शोर पैदा करेंगे। चुनाचे इस आयत की रोशनी में ये कहना कि नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लम की आंखें बंद होते ही जो कुछ आपकी इस्लाह थी वो मिट गई और फसाद बर्पा हो गए, एक महज जाहिलाना एतराज है और अहले मगरिब की तरफ से भी और बाज़ मशरिकी मुफक्किरीन की तरफ से भी हमेशा यह सवाल उठाया जाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी लंबी मेहनतें कहां गईं। 23 साल तरबियत के बाद अचानक जब आपका विसाल होता है तो आराब उठ खड़े होते हैं बगावत में और फितना इर्तदाद और ज़कात ना देने का फितना ये शुरू हो जाता है। तो कुरान करीम तो उस आखिरी दौर में जबकि हुकूमत कामिल हुई थी और इस अरसे को दो तीन साल से ज्यादा का अरसा नहीं है, इस अरसे के मुतालिक फरमाता है कि ये आराब में से एक बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो दिल से इस्लाम को कबूल नहीं जिन्होंने दिल से इस्लाम को कबूल नहीं किया और इस हद तक बहरहाल नहीं किया ये खुदा की राह में कुछ खर्च कर सकें। जो कुछ देते हैं वो मजबूरन चट्टी समझ के देते हैं और दिलों में नफरतें लगाए बैठे हैं और तुम्हारे बदख्वाह हैं तुम पर आसमानी मसायब की राह देख रहे हैं। लेकिन साथ ही जैसा कि कुरान करीम का तरीक है किसी कौम को बहसियत मजबूरी मतून नहीं फरमाता, किसी कौम को कुल्लियतन मुजरिम करार नहीं देता बल्कि वाकियाती तौर पर जो इस्तेसना हो सकते हैं उनकी भी निशानदेही फरमाता है। फरमाया मिनल आराब मन यूमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यत्तखिज़ु मा युन्फिकु कुरबातन इंदल्लाह, लेकिन अजीब है इन्हीं आराब में से अभी थोड़ी देर तरबियत पाई है लेकिन ऐसे अजीम शान वजूद पैदा हो चुके हैं मन यूमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और यौम आखरत पर ईमान लाते हैं। वह जब तक वो मालूम थे को कुरबात निंदल्ला है वह सलावात रसूल और जो कुछ भी खुदा की राह में खर्च करते हैं इसके दो ही मकासद हैं कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करें और रसूल की दुआएं हासिल करें। इसके सिवा इनका कोई मंशा नहीं। जब रुपया देते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या दिया और कैसे दिया, और जजा उनकी सिवाय इसके कोई नहीं कि खुदा उनको कुर्बत अता फरमाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआएं उनको पहुंचें। अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम, सुनो यही अदा उनकी कुर्बत पैदा कर रही है। ऐसा प्यारा अंदाज है माली कुर्बानी का कि कुर्बत तो उनको मिल गई। अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम में बहुत ही खूबसूरत मजमून बयान फरमाया गया है। ये भी फरमाया कि हां हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुर्बत अता की जाएगी या इसके नतीजे में तुम्हें यह मिलेगा। फरमाया इन्नहा कुर्बतुन, ये माली कुर्बानी का अंदाज अपनी जात में कुर्बत है। ये उन्हीं को नसीब होता है जो खुदा तआला के करीब हों। ये मजमून है, यानी जजा का मजमून तो बात की बातें हैं, वो तो अपनी जगह कायम है। इन्नहा कुर्बतुन का मतलब ये है कि इस तर्ज फिक्र के लोग जो इस बिना पर माली कुर्बानी दिया करते हैं वो तो पहले ही अहले कुर्बत हैं। जिनको खुदा का कुर्ब नसीब ना हो उनको इतनी हसीन अदाएं आ ही नहीं सकती। अजीब के कलाम है खुदा ताला का, हैरत में इंसान डूब जाता है। जरा ठहर ठहर के गौर से आप पढ़ें तो अजीब हुस्न के करिश्मे दिखाई देते हैं जो इंसान की जादूगरी से पैदा नहीं हो सकते। खुदा का कलाम है, उसमें अजीब शान है, अजीब गहराई है, अजीब सिद्क है। अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम सयुदखिलुहुमुल्लाह फी रहमतिही, और बाद में दूसरा मजमून भी बयान फरमा दिया। अल्लाह इसके नतीजे में सयुदखिलुहुम, जरूर उन पर रहमतें भी नाजिल फरमाएगा। यानी जजा तो उनको मिल गई कि कुर्बत नसीब है तो ऐसी बातें कर रहे हैं। जो वो चाहते थे वो तो पूरा हो गया, लेकिन उसके सिवा भी खुदा फरमाता है सयुदखिलुहुमुल्लाह फी रहमतिही, अल्लाह उनको इसके अलावा भी रहमतें अता फरमाएगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। यहां युदखिलुहुमुल्लाह फी रहमतिही से मुराद है कि खुदा की रहमत उनको ढांप लेगी, उसमें दाखिल हो जाएंगे, उनके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे रहमत ही रहमत होगी। ये पूरा रहमत का माहौल उनके ऊपर छा जाएगा, उनको लपेट मिलेगा, उनका कोई हिस्सा रहमत बारी ताला से बाहर नहीं रहेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और साथ ये भी वादा फरमा दिया कि खुदा ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यहां इस इहतमाल का जिक्र फरमाया गया है कि ऐसे लोग जो खुदा की राह में माली कुर्बानी अर्ज करते हैं और इस प्यार और मोहब्बत के अंदाज से करते हैं, उनमें बसा औकात बाज दूसरी कमजोरियां भी होती हैं। माली कुर्बानी से उनकी नोक पलक दुरुस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत आला किरदार दिखाने वाले, लेकिन बाद दूसरी बातों में कोताहियां भी हो जाती हैं, गफलतें हो जाती हैं, बाज दफा गुनाह सरजद हो जाते हैं, इस्तग़फार की तरफ तवज्जो पैदा होती है, फिर ठोकर खाते हैं। तो फरमाया उन लोगों के लिए मैं ये ऐलान करता हूं इन्नल्लाह गफूरुर रहीम कि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। जब किसी की एक अदा पसंद आ जाए तो उसके बाद दूसरे नकायस से इंसान आंखें बंद कर लिया करता है, और किसी की कोई अदा बहुत पसंद आ जाए तो उतना ही ज्यादा मगफरत के लिए मगफरत करने वाले के दिल में एक तलब पैदा हो जाती है। बस ये उस तलब का जिक्र है, वरना इससे पहले बख्शिश मांगने का कोई मजमून बयान नहीं फरमाया गया। तो ये बात भी आप याद रखें कि बाद नेकियों में गैर मामूली कमाल हासिल करने के नतीजे में अल्लाह ताला की जात में मगफरत की तलब पैदा होती है, यानी मगफरत अता करने की, बख्शने की तमन्ना पैदा होती है। और जहां हाथ नहीं भी फैलाया गया वहां खुदा ने खुद जिक्र फरमा दिया वइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, उनको हम ये भी बता देते हैं कि अल्लाह बहुत ही मगफरत फरमाने वाला है और बहुत रहम करने वाला है। इसके बाद तीसरी आयत है वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, साबिकून और अव्वलून तो वही हैं, मुहाजिरीन मिनल अंसार वल मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कि जो मुहाजिरीन में से हैं और अंसार में से हैं। यानी अराब तो बाद में आए, इससे पहले कौन लोग थे? मुहाजिर थे और अंसार थे, जिन्होंने हजरत अवगस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत हासिल की। फरमाया इनकी तो बात ही अलग है। फरमाया वस्साबिकून वल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल लजीन तबअहुम बे एहसान, और वो लोग जो इनकी पैरवी करते हैं एहसान के साथ, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, उनकी तो यह कैफियत है कि अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, दोनों तरफ से रजा है। वअअद्दा लहुम जन्नात तजरी तहतल अन्हार, उनके लिए ऐसी जन्नात पैदा फरमाई है खुदा तआला ने जिनके अंदर दाई नहरें बहती हैं। ज़ालिकल फ़ज़्लुल अज़ीम, और ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। यहां ये बात काबिल जिक्र है कि वल्लज़ी नतबाऊहुम बेहसान रज़ी अल्लाहु अन्हुम रज़ू अन्हु में सिर्फ सहाबा मुराद नहीं है, बल्कि सहाबा का जिक्र अलग चूंकि गुजर चुका है, इसलिए ऐन मुमकिन है कि सहाबा मुराद हो ही ना, बल्कि सहाबा की पैरवी करने वालों का जिक्र है जो बाद में आने वाले हैं। बस इस पहलू से मेरे नजदीक इस आयत का मजमून हमेशा के लिए जारी और सारी है। यह कहना गलत है कि सिर्फ आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के लोगों का तज़किरा हो रहा है। अगर कलामे इलाही हमेशा के लिए है, अगर आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना और आपसे तरबियत याफ्ता सहाबा का नमूना हमेशा के लिए है, तो ये फैज जो भी पाएगा वो उन इनामात से भी जरूर हिस्सा लेगा जिनका इस आयत करीमा में जिक्र फरमाया गया है। लेकिन एक शर्त दाखिल फरमा दी, वल्लज़ीन तबऊहुम बेहसान, और वो लोग जिन्होंने इत्तबा की है एहसान के साथ। अब लफ्ज एहसान काबिल गौर है, यहां एहसान किस तरह मजमून से मुताबकत खाता है ये बात काबिल तवज्जो है। आप जब किसी की पैरवी करते हैं तो आम मानों में तो एहसान नहीं करते ना कि उस पर हमें बड़ा एहसान किया, उसकी पैरवी की। जिसकी पैरवी करें वो, जिसकी पैरवी की जाती है वो मोहसिन हुआ करता है, और जो पैरवी करता है उस पर उसका एहसान हो, उस पर उस मोहसिन का एहसान होता है। तो कुरान करीम जब जाहिरी मजामीन को उलटाता है तो वहीं आपके कदम रुक जाने चाहिए और आपको मालूम हो जाना चाहिए कि कोई बहुत ही अजीम बात बयान फरमाई जा रही है जो आम मजामीन से मुख्तलिफ है। फरमाया वो लोग जो इन बुजुर्गों की यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता महाजरीन और अंसार की अदाओं की नकल करने की कोशिश करते हैं, ये वो लोग हैं जो साबिकून अलवलून हैं, जिन्होंने आगाज में इस्लाम सीखा और लंबा अरसा हुजूर की तरबियत पाई। अव्वलून कहकर यह बता दिया गया है कि अगरचे अराब में भी अच्छे अच्छे पैदा हुए मगर इनका मुकाबला तो नहीं हो सकता, जिन्होंने आगाज ही में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की और फिर आपसे खुद बराह रास्त तरबियत पाई और लंबा अरसा यह तरबियत पाई, उनकी पैरवी एहसान से करने का जिक्र है। यहां एहसान के माने दो हैं। एक एहसान का माना तो यह है कि वो अपनी जात पर एहसान करते हैं, किसी और पर एहसान नहीं करते। वतबाउहुम बेहसान, यानी अपने नफ्स को हसीन तर बनाने के लिए, अपने वजूद को पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाने की खातिर वो उनकी पैरवी करते हैं। यहां पैरवी के मजमून में अपने नफ्स की तरबियत का मजमून बिल इरादा तौर पर दाखिल हो जाता है। वो जानते हैं कि हम खूबसूरत नहीं हो सकते जब तक इन लोगों जैसा न बनने की कोशिश करें। जिस तरह इस जमाने में बाद लोग किसी क्रिकेटर को अपना हीरो बना लेते हैं, कोई किसी एक्ट्रेस को बना लेते हैं और उनके तरीक सीखने की कोशिश करते हैं, अगर वो अच्छा बॉलर है क्रिकेट का तो उस अदा से बॉल करते हैं, अगर अच्छा बैट्समैन है तो उस अदा के साथ बैटिंग की कोशिश करते हैं। इसी तरह बाज बेवकूफ बच्चियां जब नई नई बड़ी होती हैं तो बाज एक्ट्रेसों को उन्होंने अपना मकसूद और मतलूब बनाया हुआ होता है और उन्हीं की नकाली कर रही होती हैं और बच्चे भी इसी तरह करते हैं। जो मार्केटें इस किस्म के कपड़ों वगैरह से भरी होती हैं, जिस पर किसी न किसी मशहूर आदमी का नाम है कि वो इस तरह पहना करता था, इस रंग की चीजें पसंद करता था, तुम भी ऐसा ही करो। तो किस लिए? इसलिए कि वो खूबसूरत समझते हैं और समझते हैं कि हम हसीन हो जाएंगे। पैरवी में एहसान का मजमून दाखिल है। एहसान का मतलब है चीज को अच्छा बनाना, खूबसूरत बनाना। बस वत्तबाउहुम बेएहसान, इनका मतलब यह होगा कि वो उनकी पैरवी करते हैं उनको मॉडल समझते हुए, ये जानते हुए कि जितना हम इनके करीब होंगे उतना ज्यादा खुद खूबसूरत और दिलकश होते चले जाएंगे। और गौर करते रहते हैं कि उन्होंने किस किस रंग में कुर्बानियां दी और फिर वैसे ही रंग इख्तियार करते हैं। हजरत मुसे मौद रजी अल्लाह तआला अन्हो बसा औकात अपने खुतबात में सहाबा के की माली कुर्बानियों के तस्करे इस रंग में किया करते थे कि उससे बचपन से ही लोगों के दिलों में उस किस्म की कुर्बानियां करने की तमन्ना पैदा हो जाती थी। और आजकल के जमाने में भी जमात अहमदिया ने अल्लाह ताला के फजल के साथ इस मजमून में नए रंग भरे हैं। अगरचे इत्तबा उन्हीं लोगों की है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो नए रंग पैदा होते हैं वो इस मजमून में ज्यादा दिलकशी पैदा करते चले जाते हैं, लेकिन बुनियादी अदाएं नहीं बदलती, उसमें कभी तब्दीली नहीं आई। जिन बातों के मुतालिक खुदा ने यह फरमाया कि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हो, वो बुनियादी सिफात हर इंसान की हर जमाने में एक ही रहती हैं, ये मजमून समझने के लायक है। अगर ऐसा ना हो तो फिर कुरान भी बदलना होगा, फिर कोई किताब हमेशा के लिए कामिल नहीं हो सकती। मगर क्योंकि कुरान करीम दीन फितरत है, इसलिए उन फितरी मजामीन को खोल खोल कर बयान फरमाता है जिनमें तब्दीली कोई नहीं। ला तब्दील अल खल्क अल्लाह का मजमून है, क्योंकि इंसानी फितरत से इन बातों को बांधा गया है और फितरत में तब्दीली नहीं होती, लेकिन उस फितरत के मजाहिर बदलते रहते हैं, वो मुख्तलिफ रंग में अपना इजहार करती है। तो जब मैं कहता हूं नए रंग भरे, तो मेरी मुराद ये नहीं कि उन्होंने नई अदाएं बनाई हैं। अदाएं वही हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके साथियों की थी रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, लेकिन उनमें अपने अपने अंदाज के मुताबिक, अपनी अपनी इनफरादी हैसियत के मुताबिक नई किस्म की के जज्बात और इजहारात को दाखिल किया है और एक इनफरादियत पैदा की है। तो अल्लाह ताला ने जहां एहसान का जिक्र फरमाया, वहां ये मुराद है कि उन लोगों की पैरवी करके अपने आमाल को हसीन से हसीन तर बनाते रहते हैं। दूसरे मजमून का ताल्लुक उन लोगों से है जिनकी पैरवी की जाती है। वत्तबाउहुम बेएहसान, कि एहसान का एक माना है बहुत ही ज्यादा हसीन नेकी, क्योंकि आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आला दर्जे की नमाज की जो तारीफ फरमाई है उसे एहसान करार दिया है। और कुरान करीम से पता चलता है कि एहसान का यह माना एक दीनी इस्तिलाह है कि ऐसी नेकी जो अपने जात में दर्जा कमाल को पहुंची हो। तो फरमाया कि वो उनकी पैरवी में ये नहीं देखते कि उनसे कमजोरियां क्या सरजद हुई और उनको अपने लिए नमूना बनाए। ना सिर्फ ये कि वो नेकियों पर नजर रखते हैं बल्कि नेकियों में से भी बेहतरीन पर उनकी निगाह ऊंची होती है, और वो उनमें से जो बेहतरीन अदाएं करने वाले खुदा की मोहब्बत में मुबतला, खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार उस शाफ मोहम्मद मुस्तफा थे, उनकी पैरवी करते हैं उन अदाओं में जो उनके अंदर बेहतरीन है और उनकी जात में दर्जा कमाल पर रखती हैं। इस मजमून में एक पहलू तो हमेशा के लिए मरदूद फरमा दिया, यानी ये बाद लोग जो ये कहते हैं कि फलां शख्स ने जो इस ओहदे पर था और इस मुकाम पर था उसने फलां बदी की तो हमने भी कर ली तो क्या फर्क पड़ता है, उसको भी नहीं पकड़ते। इस मजमून को हमेशा के लिए शायद ने मरदूद कर दिया है। फरमाया है पैरवी करने वालों को हरगिज़ ये हक नहीं है कि अदना की पैरवी करें चाहे वो आला से सरजद हुआ हो। अदना फेल अगर आला से भी सरजद हुआ हो तो कुरानी तालीम के मुताबिक वो पैरवी के लायक नहीं रहता, इसलिए उसका हवाला दिया ही नहीं जा सकता। हवाला देना है और हवाला तलाश करना है तो अपने लिए हुस्न का हवाला दो और हुस्न का ही हवाला तलाश करो। हुस्न पैदा करने की खातिर काम करो और हुस्न में जो सबसे आला मुकामात आला दर्जे का हुस्न है उसकी पैरवी करने की कोशिश करो। फरमाया इनकी जगह यह है रज़ी अल्लाहु अन्हुम रज़ू अन्हो, इनसे खुदा हमेशा के लिए राजी हो गया, वह रज़ू अन्हो और वो हमेशा के लिए अल्लाह से राजी हो गए। वह आबदा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अलअन्हारो, उनके लिए खुदा ने ऐसी जन्नतें बना रखी हैं जिनमें दायमी नहरें बहती हैं, हमेशा हमेशा के लिए उसमें रहेंगे। ज़ालिक अल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। ये वो इस्लाम की रूह है कुर्बानी कुर्बानी की, जो जिसका सिर्फ एक पहलू यहां बयान हुआ है, इसके अलावा मुख्तलिफ पहलुओं से माली कुर्बानी के निजाम को खुदा ताला ने खोल खोल कर बयान फरमाया है और उसके हुस्न कुबा को बड़ी तफसील के साथ वाज़ह फरमा दिया है। जमात अहमदिया में बाद लोग अगरचे दिक्कत महसूस करते हैं चंदे अदा करने में और बाद रोज भी महसूस करते होंगे, मगर चूंकि जबर का निजाम नहीं है और हुकूमत नहीं है, इसलिए जब तक वो उस अंदरूनी तरद्दुद के बावजूद माली कुर्बानी में हिस्सा ले रहे हैं उनके ऊपर हम हरफ नहीं रख सकते, क्योंकि उनके मुतालिक ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इकरार के साथ कुर्बानी की है, अगरचे कुछ ना कुछ जबर का पहलू उनके अंदर पैदा हो जाता है और उसके आगाज के वक्त इंसान को खूब अच्छी तरह खबरदार होना चाहिए। जिन दिलों में ये बातें पैदा होती हैं उनका काम है कि खुद अपनी निगरानी करें, क्योंकि बैरूनी तौर पर कोई ऐसा निजाम नहीं है जिसे ये इजाजत हो कि वो किसी को कह सके कि तुमने जबर के साथ कुर्बानी दी है, तुम्हारे दिल में कराहत थी, ये कहने का किसी को हक नहीं है। सिवाय इसके कि कोई कराहत के इजहार कराहत का इजहार करता है और बाद ऐसे बदनसीब हैं जो कर देते हैं, उनके मुतालिक हमेशा मैं यही कहता हूं जब इत्तला मिलती है कि आइंदा इनसे कभी चंदा न लिया जाए, क्योंकि निजामे जमात में कोई जबर नहीं है। लेकिन बात कहते हैं जब चंदा लेने वाले जाते हैं, क्या तुमने मुसीबत डाली है, रोज आ जाते हो, ये चंदा वो चंदा, बाद लोग मजालिस लगाते हैं और कहते हैं जी कितनी किस्म के चंदे हो गए हैं, ये क्या निजाम है, एक सीधा चंदा आम रखें, वसीयत रखें जो मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने जारी फरमाया, कि आए दिन के नए चंदे ईजाद करने का क्या मौका है। हालांकि आए दिन की जरूरतें आए दिन के चंदों से ही पूरी होंगी और चंदा में कोई जबर नहीं है, खुदा के नाम पर अपील की जाती है, उन लोगों के दिलों को मुखातब किया जाता है जो दिल पहले ही तमन्ना में रहते हैं कि कोई खुदा की राह में उस कुर्बानी वाली आवाज उठे और हम फिर लब्बैक कहें और फिर इससे लुत्फंदोज हों। तो वो लोग जिनके दिल में लाजमी चंदों से किसी किस्म का की कराहत पाई जाती है या कई तहरीकात में वो जिस्म पर अपने दिलों पर बोझ महसूस करते हैं, उनको अपना तजिया करना चाहिए और शुरू में ही अपनी पहचान कर लेनी चाहिए। बाज दफा वो इस वजह से कई चंदों पर एतराज करते हैं हालांकि उसमें किसी किस्म का भी जबर नहीं, लाजमी चंदों में भी जबर नहीं है, लेकिन लफ्ज लाजम ने उसके अंदर एक खास संजीदगी पैदा कर दी है जिसकी वजह से इंसान समझता है कि ये चंदा तो देना ही देना है, लेकिन जिसको तौई कहा जाता है उसका तो मजमून ही यह है कि देना है दो, नहीं देना तो ना दो, कतन कोई हरफ नहीं, कोई एतराज नहीं, सिलसिले के ओहदों का जहां तक ताल्लुक है, वोट का ताल्लुक है, तुम्हारे हकूक का ताल्लुक है, एक जर्रा भी असरअंदाज नहीं होंगे। अगर तुम लाजमी चंदे दे देते हो तो इतना काफी है, यानी काफी इन मानों में कि तुम्हारे बुनियादी हकूक जो जमात के साथ वाबस्ता रहकर तुम्हें मिलने चाहिए वो सारे मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको तौई चंदों पर इतराज है। इसका मतलब है वो कराहत का मजमून दाखिल हो चुका है और शुरू हो गया है। मैंने इस पर गौर करके देखा है क्योंकि मुझे भी चंदों से मुतलिक बहुत से जमातों में जाने और तफसील से जायजे लेने का मौका मिला है। बात यह है कि उनको एक बात से तकलीफ होती है कि दूसरे लोग जब चंदे देते हैं बढ़ बढ़ के तो ही चंदे और इनका दिल नहीं खुलता तो इनको शर्मिंदगी महसूस होती और वो समझते हैं कि सोसाइटी में हमारा मुकाम नंगा हो जाएगा और लोगों को पता लगेगा कि ये तो हिस्सा नहीं लेता जबकि दूसरे ले रहे हैं, ये लबैक कहने में पीछे है। तो उसके नतीजे में इस पर पर्दा डालने की खातिर वो अफलसफा बना लेते हैं क्योंकि हम इसके कायल ही नहीं, यह ही बकवास, ये सारा सिस्टम ही गलत है, ये नई नई बातों का हमने कायल, हम तो वही बुनियादी चंदे के कायल हैं, आगे भी नहीं बढ़ेंगे। अगर वो जमात में गलत प्रोपेगेंडा न करें, अपनी खिफत मिटाने के लिए झूठे एतराज न बनाएं और सिर्फ ये कह दिया करें कि हमें इतने की तौफीक है तो इस पर कोई हर्ज नहीं, ये जायज है और उस पर किसी को हक नहीं कि उन पर एतराज करें। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अराबी आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे ये बताइए कि वो दीन बुनियादी तौर पर है क्या, क्या मैं कर लूं तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा, आपने कुछ फराइज बताए। उसके बाद आपने नवाफिल का मजमून शुरू किया तो उसने कहा इनके बगैर दीन मुकम्मल नहीं होगा, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा खुदा के हुजूर। उसने कहा मैं नहीं, जो फराइज बता दिए अगर सिर्फ इतना कर लो तो पकड़े नहीं जाते। उसने कहा मेरे लिए बहुत काफी है, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं। अपने फरमाया अगर तुम आज में सच्चे हो तो जाओ, कोई फिक्र नहीं। लेकिन याद रखना चाहिए ये इंसानी फितरत की बात है, जो सिर्फ फराइज तक रहते हैं उनमें कुशन कोई नहीं होता, उनमें इब्तलाओं और मुश्किलों के वक्त जो ठोकर से बचने के लिए दरमियान का दलील हिस्सा है वो नहीं पाया जाता। जिस तरह बर्तन, शीशे के बर्तन ना भेजें किसी जगह और ऐसे मटेरियल के ऐसे कपड़े वगैरह के बगैर, नहीं कागज वगैरह के बगैर उसको भेज दें जो बाहर की दीवार और बर्तनों के दरमियान एक रोक बन जाता है, उसके टूटने का बहुत ज्यादा इम्कान है, टूटने का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो इसी तरह इंसान के ईमानियात की और अमाल की हालत होती है, सुन्नतें और नवाफिल उसके बुनियादी अमाल की हिफाजत करते हैं और अगर कहीं कमजोरी वाकया होती है, कोई इतला आता है तो उसका बोझ वो सुन्नतों और नवाफिल की दीवारें उठा लेती हैं और उसके फराइज कायम रहते हैं। बस बहुत बड़ी बात की थी उस शख्स ने जिसने ये कहा कि मेरे लिए बहुत काफी है और मैं, आपने फरमाया हां अगर तुम पूरे रहते हो अपने वादे पर तो फिर कोई खतरा नहीं, मगर बहुत बड़ा अगर है, कौन है जो इस वादे पर पूरा रहे और सिर्फ फराइज तक ठहर जाए और नवाफिल के जरिए फराइज की हिफाजत जरूरी न समझे और फिर इसमें कामयाब हो, गैर मामूली इंसान ही हो सकता है। और गैर मामूली इंसानों को तो फिर नवाफिल की भी तौफीक मिलती है। तो अल्लाह ताला ने जो माली निजाम जारी फरमाया है उसके मजमून को समझना चाहिए। वो लोग जो नवाफिल पर भी एतराज शुरू कर देते हैं वो उनका वो मजमून नहीं है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की थी, आज सल्लाम से बात की थी। वो एक सादा सा इंसान था, उसने खोल कर कहा कि बाकियों के लिए बेशक हो, मुझे इस पर एतराज नहीं, मैं ये बहस नहीं करता कि इनकी जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर मैं ना करूं वो जायद बातें तो मैं मर जाऊंगा या जिंदा रहूंगा रूहानी लिहाज से। आपने फरमाया तो मरते नहीं, सुनने के बस इस जिंदगी के साथ काफी है मेरे लिए, मुझे मजीद तकल्लुफात की जरूरत नहीं। मगर ये लोग जिन दानिश्वरों की मैं बात कर रहा हूं ये उस नफरी निजाम पर एतराज करते हैं, उस जुबानें खोलते हैं, कहते हैं ये क्या सिलसिला शुरू हो गया है, नए नए तरीके, नए नए कुर्बानियों के रास्ते, ये होना ही चाहिए। हम इसलिए इनसे बाज आते हैं कि हम इनके कायल ही नहीं हैं, हम इनको दुरुस्त नहीं समझते। अगर ऐसी बात है और कोई शख्स इस किस्म की के इजहार क्या इजहार राय अहमदी अवाम में करता है तो वो फितना परदाज है। अपनी जात में वो बेशक नफरी चंदा ना दे, अगर वो फर्जी चंदा भी ना दे तो अहमदी फिर भी रहता है, ज्यादा से ज्यादा उसका नुकसान इतना होगा कि वोट के निजाम में वो शामिल नहीं होगा, ना वोट दे सकेगा ना उसेदार बन सकेगा, और छुट्टी और उसको मुसीबत से रिहाई, उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब वो बातें करेगा सिलसिले के किसी निजाम के मुताबिक तो वो मुनाफे खतरे, उससे लाजमी चंदा भी नहीं लेना चाहिए। और जहां कोई ऐसा शख्स है जो ये कहता है कि निजामे जमात में फला फला चंदे इजाफे हो गए, हम उसके कायल ही नहीं है, मेरी तरफ से निजामे जमात को इजाजत है कि उसको कह दें कि तुम बेशक अपने चंदे अब ना दो, हमें तुम्हारे माल की जरूरत नहीं। निजामे जमात में जो माली हिस्सा है ये बहुत ही मुकद्दस है इस पहलू से कि इसकी तमाम तर्जनें मोमिनों के आला इतकादात में हैं और गहरे कल्बी पुरखलूस जज्बात में है। ये कोई टैक्सेशन का निजाम नहीं है। अगर इस दरख्त से जल्जला आता है तो दिमाग में जो इतकादात की जड़ें हैं उन पर भी जल्जला आता है और दिल में जो पुरखलूस जज्बात के अंदर जो जड़ें गड़ी हुई हैं उन पर भी जल्जला आता है, वो भी उखड़ती हैं। और ये नहीं हो सकता कि दरख्त का ऊपरला हिस्सा ही झोलता रहे और जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। बाद दफा जड़ों की बीमारियां ऊपर चली जाती हैं, बाद दफा ऊपर के तला नीचे दाखिल हो जाते हैं। मगर जमात का माली निजाम बहुत ही मुकद्दस निजाम है, इसका ताल्लुक गहरे गैर मुतजलजल इतकादात से भी है और बहुत ही पुरखलूस मोहब्बत के जज्बात से भी है। हमें इस निजाम की बहरहाल हर कीमत पर हिफाजत करनी है और अगर कोई इसके ऊपर पूरा नहीं उतरता तो जमात के माली निजाम को जरा भी नुकसान नहीं होगा। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हजार भी ऐसे अफलाद हों, कितने ही अमीर हों, अगर वो नाकदमी की वजह से जमात के माली निजाम से में हिस्सा लेने से महरूम हो जाते हैं तो खुदा ताला जमात की जरूरियात में कभी पूरी कमी नहीं करेगा, ना आज तक हुई है। इस जमन में एक और बात बहुत ही जरूरी समझाने वाली यह है कि जब हम खुदा की राह में खुदा की मर्जी की खातिर चंदा दे बैठे और कुर्बत पेश नजर है या इमाम की दुआएं पेश नजर हैं तो सौदा तो पूरा हो गया, नकदो नक जिस खातिर सौदा किया था तुम्हें कीमत मिल गई। उसके बाद तुम्हारा यह हक नहीं रहता कि हमारी जमात ने इतना चंदा दिया है इसलिए हमारी जमात पर इतना खर्च किया जाए, हमारे मुल्क ने इतना चंदा दिया है इसलिए किसी और मुल्क पर खर्च ना किया जाए। ये जो निजाम है मजलिस शूरा के जरिए बजट बनाने का, ये भी एक तौई निजाम है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये भी नहीं था। कुरान की माली कुर्बानी की रूह यह है कि क्योंकि तुम खुदा की खातिर खुदा के नुमाइंदे के सुपुर्द माल करते हो जिस पर तुम्हें कामिल एतमाद है, इसलिए जब तक ये एतमाद कायम रहे तुम्हारा दिल पूरी तरह मुतमैन होगा कि जो कुछ हमने दिया है जिस गरज से दिया वहीं खर्च होगा, लेकिन गर्जों की तयीन करने में तुमको हिस्सा नहीं लोगे। ये शर्त नहीं है कि तुम ये बताओ कि इसको फलां जगह जरूर खर्च किया जाए। ये और बात है। और एक और बात है जिसको मैं यहां जिसकी वजाहत कर दूं ताकि बाद दोस्त गलतफहमी में उतरा ना हो, वो चंदे जो बिल अमूम खुदा के नाम पर दिए जाते हैं उनके बजट की मैं बात कर रहा हूं। बाज मखसूस तहरीकात होती हैं, मसलन रूस के लिए है, अफ्रीका के लिए है, अफ्रीका के भूखों के लिए मदद की तहरीक है वगैरह वगैरह, कुरान करीम की इशात की तहरीक है, मसाजिद के तामीर की तहरीक है। उनमें चंदा देने वाला एक गरज के साथ चंदा देता है और वहां जमात का फर्ज है कि उस गरज के साथ उस चंदे के खर्च को मशरूत रखे और यही जमात करती है। लेकिन ये अपनी जात में कोई बुरी बात नहीं, जिस गरज के लिए कोई इंसान कहता है मैं आम चंदा भी दूंगा जायद मैं ये फला गरज के लिए देना चाहता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाज दफा बाज लोग बाज ऐसी शर्तें आयद कर देते हैं कि इसको इस तरह तकसीम किया जाए, इस तरह खर्च किया जाए, इस तरह इसकी हिफाजत की जाए। उन लोगों को मैं कहता हूं कि फिर तुम खुद करो, मैं तो नहीं कबूल करूंगा। अगर तुम्हें एतमाद है निजामे जमात पर तो निजामे जमात के स्कूल शौक से ये रकम कर दो, मकसद बता दो, उस मकसद के बताने के बाद मुतमिन हो, कभी दिल में वहम पैदा हो तो पूछ भी लो बेशक कि उस पर खर्च हुआ कि नहीं, तुम्हें बताया जाएगा। लेकिन ये कि बारीकियां बताओ कि इस तफसील से इस तरह तय करें ये निजाम मुकर्र किया जाए, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको यह समझा रहा हूं कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग चंदा देते थे और इस बात का कभी तस्करा नहीं करते थे कि फलां जगह फलां तरीक पर खर्च किया जाए। फिर हजरत अब्दुल मोहम्मद रसूलुल्लाह या आपके नुमाइंदों का काम था, जिस तरह चाहें उसको खर्च करते थे, लेकिन खर्च उन्हीं जगहों पर होता था जो दीन की अगराज हैं। हजरत अब्दुल मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में भी यही तरीक जारी रहा। अंजुमन बन भी गई तब भी कोई मजलिस शुरा कायम नहीं थी, और अंजुमन के सुपुर्द कर दिया जाता था। अंजुमन को हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की हदायत थी कि इन हदायत के ताबे खर्च करो, लेकिन कभी किसी चंदे वाले ने यह नहीं कहा या किसी जमात ने यह नहीं कहा कि हमने इतना चंदा खर्च दिया है और तुम लोग इतना फलां जगह खर्च कर रहे हो और हम पर कम कर रहे हो। ये कैसा जाहिलाना और बातिल ख्याल है जिसके साथ चंदों की रूह बर्बाद हो जाती है। अव्वल तो जैसा कि मैंने कहा, जब चंदा दिया खुदा की कुर्बत की खातिर, इमाम की दुआएं लेने के लिए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआएं लेने के लिए, सबसे बड़ी बात यह है। इमाम तो मैं इन मानों में कह देता हूं कि आपकी गुलामी में बाद में भी ये मजमून जारी रहता है, लेकिन असल वो सलावात मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैं जो आज भी इन लोगों को पहुंचती रहेंगी, क्योंकि आपका जमाना जारी है और आपने हर जमाने के मुखलिसीन के लिए दुआएं की हैं। इसलिए इतने बड़े मकसद को पा लेने के लिए, जिसके जवाब में अल्लाह ताला कहे अलाहा कुर्बत, देखो देखो उनको तो कुर्बत अता हो चुकी है, इसके बाद वो ये सोचें कि और मजीद भी इससे कुछ कमाई करें और ये देखें कि कहां खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ और हमारे ऊपर क्यों इतना खर्च नहीं हुआ। ये ऐसे फितने हैं जिन्हें कभी जमात में कबूल नहीं किया जाएगा, दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों को मैं कह देता हूं कि तुम अपने रुपए अपने पास रखो, ये जहन्नम में फेंकने के काबिल तो हैं, लेकिन जमात में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात इनसे इस्तेफादा नहीं कर सकती। हां, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माली कुर्बानी की जन्नत मुसलमानों को अता की है, ये रुपया उसमें दाखिल होने के लायक नहीं ठहरता। इस किस्म के भी बेवकूफों वाले फितने कई दफा पैदा होते हैं। अभी हाल ही में एक जगह पैदा हुआ है और मैंने उनको यही कहला भेजा है, मैंने कहा तुम, तुम्हारी सारी आमला, तुम्हारे सारे चंदा देने वाले एक आना भी सिलसिले को न दो, क्योंकि मेरे नजदीक अगर इन ख्यालात के साथ चंदा देना है तो मर्दूद चंदा है, ऐसे चंदे के ऊपर जमात थूकती भी नहीं है। तुम और तुम्हारे जैसे लोग जहां चाहें इन रुपयों को फेंकें, जमात उनसे कभी कुछ कबूल नहीं करेगी। वो लोग जिन्होंने कादियान में कुर्बानियां दी थी, वो गरीब औरतें जिनका वजीफों पर गुजारा था और उन वजीफों से बचा बचा के चंदे देती थी, उनके चंदे यहां खर्च हुए हैं मस्जिद फजल पे। एक ऐसा भी दौर था कि जब औरतों ने कुर्बानियां दी तो यहां चंदे खर्च हुए, और कभी किसी औरत ने मुड़ के नहीं पूछा कि हम गरीब, हम फाका ज़दा, हम कमजोर लोग, तुम यहां गुलाम मुल्क के चंदे उठा उठाकर इतनी कुर्बानियों के चंदे उस अमीर मुल्क में खर्च कर रहे हो जो तमाम दुनिया की दौलतें समेट रहा है। इशारतन भी कभी किसी ने यह सवाल नहीं उठाया। जिस निजाम पर एतमाद है, जिस खिलाफत से वाबस्तगी इख्तियार की है, उसके साथ ताल्लुकात तो कामिल एतमाद पर चलते हैं। जहां एतमाद खत्म, वहां चंदों का निजाम ही खत्म हो गया, वहां यह ताल्लुक ही कायम नहीं रहा करता। बस माली निजाम में भी कुरान करीम ने दुनिया का बेहतरीन माली निजाम हमारे सामने रखा है, उसकी तफसील के साथ हमें उसके हुस्न कुबा को समझा दिया है, उन खतरात की निशानदेही कर दी है जिनमें बाल लोग मुब्तला हो जाते हैं, वो नमूने कायम फरमा दिए हैं जिन नमूनों को दाइमी करार दिया, और फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनके बाद में आने वाले क्यामत तक पैरवी करते रहेंगे और क्यामत तक इनका फायदा उठाते रहेंगे। इसके बाद जमात अहमदिया में इस किस्म के बाज जाहिलों का फितने उठाना हरगिज काबिल कबूल नहीं है। मैं जैसा कि बयान कर चुका हूं कि कौड़ी की भी इनके चंदों की कीमत नहीं है, ये सारे अपने चंदे लेकर जहां चाहे भाग जाएं, सिलसिले को इनकी जरूरत नहीं है और इनके जाने से बरकत होगी, इनके दाखिल जाने से बरकत नहीं होगी। मगर मैं जानता हूं कि सिलसिले की भारी अक्सरियत से भी ज्यादा भारी अक्सरियत अल्लाह ताला के फजल से जमात माली कुर्बानी में हजरत अब्दुल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की याद को ताजा करने वाली जमात है, आपकी रस्मों को जिंदा करने वाली जमात है, आपकी अदाओं को अपनाने वाली जमात है, उन्हीं कदमों को चूमती हुई आगे बढ़ रही है जिन कदमों के निशान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे छोड़े थे। खुदा करे कि क़यामत तक हम उसी माली निजाम को जिंदा रखें जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में नाजिल हुआ, और वो निजाम है जो हमें जिंदगी बख्शेगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر